आज है 25 मार्च दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। अमेरिका ने कहा बेल्जियम में हमला करने वाले दोनों भाइयों के नाम थे निगरानी सूची में। डेविड हेडली ने कहा लश्कर ए तैयबा ने की थी बाल ठाकरे की हत्या की कोशिश।
पहली बात उसने कही है कि 26/11 का हमले के लिए जो भी पैसा मिला था उसको पैसे को ISI ने मुझे दिया था, ये बात उसने साफ साफ पेश किया।
पाकिस्तान में अधिकारियों ने एक भारतीय जासूस के गिरफ्तारी का किया दावा। क्या कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी संभव है?
मैं वो मुजाहिद हूँ, मिलिटेंट नहीं कहूँगा, मैं वो मुजाहिद हूँ, साबिका मुजाहिद हूँ। मैं चाहता हूँ कश्मीरी पंडित फिर वापस आए, अमन और सलामती के साथ हमारे साथ रहे। नहीं, हड़ताल तो नहीं किया। चलिए ठीक है, आपसे ये वादा रहा, इंशाल्लाह हम हड़ताल भी करके दिखाएंगे।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार दिलनवाज पाशा से। पेरिस के उत्तर पश्चिमी उपनगर से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद फ्रांस की पुलिस ने चरमपंथ विरोधी अभियान शुरू किया है। पुलिस अर्जेंटेई उपनगर में घरों की तलाशी लेकर विस्फोटक या हथियार होने के सुराग खोज रही है। गृहमंत्री बर्नार्ड कैजनोव का कहना है कि एक संदिग्ध चरमपंथी की गिरफ्तारी के बाद उच्च स्तर की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। गृहमंत्री के मुताबिक हमला करने की ये साजिश अंतिम चरण में थी। उन्होंने कहा कि ये बेहद अहम गिरफ्तारी है। अधिकारियों के मुताबिक ब्राजील्स में पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले ही ब्राजील्स के एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर बड़े आत्मघाती हमले हुए थे। अधिकारियों का कहना है कि 3 संदिग्धों को सिटी सेंटर में संघीय अभियोजक के कार्यालय के बाहर हिरासत में लिया गया है। ब्राजील्स के कुछ इलाकों में घर घर की तलाशी के बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि अमरीका और रूस के बीच सीरिया में राजनीतिक परिवर्तन के काम तेज करने पर सहमति बन गई है। मास्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के बाद जॉन कैरी ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा
Russia will have to speak for itself as to what it's going to choose to do in order to
रूस को खुद ये बताना होगा कि वो सही फैसला लेने में राष्ट्रपति असद की मदद के लिए क्या करेगा, लेकिन हमने जो ऐलान किया है आज उस पर सहमति है। हम राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में काम तेज करेंगे। जॉन केरी ने कहा कि अमेरिका और रूस राष्ट्रपति असद को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए राजी करने के प्रयास करेगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने कहा कि रूस और अमरीका सीरिया सरकार और विपक्ष के बीच सीधी वार्ता कराने के प्रयास भी करेगा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पूर्व बोस्नियाई सर्व नेता रादोवान कैराजिच का नरसंहार के लिए दोषी ठहराया जाना उन ताकतवर लोगों के लिए कड़ा संदेश है जिन्हें उनके कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कैराजिच को 40 साल कैद की सजा सुनाई गई है। हेग के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में उन्हें 10 आरोपों का दोषी करार दिया गया। इनमें सेब्रेनित्सा में हुआ नरसंहार भी शामिल है। इस नरसंहार में 8,000 मुस्लिम पुरुषों और युवकों की हत्या कर दी गई थी। उन पर सारायेवो की आबादी को डराने के लिए निशानेबाजों को गोली मारने और बम बरसाने के आदेश देने का भी दोषी करार दिया गया है। नाइजीरिया के अधिकारियों का कहना है कि बोको हराम चरमपंथियों ने देश के सुदूर उत्तर पूर्वी इलाके से 16 महिलाओं का अपहरण किया है। इनमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। अमेरिका ने कहा है कि बेल्जियम में हमला करने वाले भाई इब्राहिम और खालिद बकरावी उसकी निगरानी सूची पर थे। वहीं बेल्जियम ने माना कि ब्रसल्स के हमलावरों को लेकर उससे गलती हुई है। उधर तुर्की ने कहा है कि उसने इब्राहिम अल बकरावी को पिछले साल जून में गिरफ्तार किया था और बाद में प्रत्यर्पित कर दिया था। पूरा ब्यौरा सुना रहे हैं दिलनवाज पाशा।
ब्राजील्स में हुए हमलों के बाद बेल्जियम में पुलिस का व्यापक अभियान जारी है। गुरुवार शाम 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां ब्राजील्स के शार्बीक में की गई घर घर की तलाशी के बाद हुई हैं। हालांकि गिरफ्तार संदिग्धों की पहचान या हमलों से उनके संबंध के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। दूसरी ओर फ्रांस में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जो हमलों की योजना बना रहा था। फ्रांस के गृह मंत्री बर्नार्ड कैजनोव के मुताबिक ये गिरफ्तारी पेरिस के उत्तर पश्चिमी उपनगर में हुई है। कैजनोव का कहना है कि ये गिरफ्तारी बेहद अहम है और पुलिस का अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने बताया,
Cette opération fait suite à une interpellation importante effectuée ce matin.
ये अभियान आज सुबह हुई बड़ी गिरफ्तारी के बाद चलाया जा रहा है। इससे हमने फ्रांस में हमला करने की एक बड़ी योजना को नाकाम कर दिया है। गिरफ्तार व्यक्ति फ्रांस का नागरिक है और शक है कि वो उच्च स्तर की साजिश में शामिल है। वो फ्रांस पर हमला करने की साजिश रच रहे चरमपंथी नेटवर्क के साथ काम कर रहा था। हालांकि अभी हमारे पास इस गिरफ्तारी को पेरिस या ब्रसेल्स में हुए हमलों से जोड़ने के पर्याप्त सबूत नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका ने कहा है कि बेल्जियम में हमला करने वाले भाई इब्राहिम और खालिद बकरावी उसकी निगरानी सूची पर थे। वहीं बेल्जियम ने माना है कि ब्राज़ील्स के हमलावरों को लेकर उससे गलती हुई है। इससे पहले तुर्की ने कहा था कि उसने इब्राहिम अल बकरावी को पिछले साल जून में गिरफ्तार किया था और बाद में प्रत्यर्पित कर दिया था। तुर्की का कहना है कि उसने बेल्जियम को उसके विदेशी लड़ाका होने की चेतावनी भी दी थी, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया था। ब्रसेल्स हमलों के बाद बेल्जियम के गृहमंत्री और न्यायमंत्री ने इस्तीफे की पेशकश भी की है। हालांकि प्रधानमंत्री ने उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए हैं। मंगलवार को हुए आत्मघाती हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और करीब 250 घायल हुए हैं। तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इन हमलों के बाद बेल्जियम ने खतरे का सर्वोच्च अलर्ट जारी किया था, जिसे अब घटाकर कम कर दिया गया है।
बेल्जियम ने कहा, हमलावरों को लेकर उससे हुई गलती, ये थे दिलनवाज पाशा। पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि भारतीय जासूस को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए भारतीय जासूस स्थानीय अलगाववादी लड़ाकों की मदद कर रहे थे। मैंने इस बारे में और जानकारी के लिए क्वेटा फोन कर उर्दू सेवा के संवाददाता मोहम्मद काजिम से बात की।
इस हवाले से हमेशा यहाँ जो है ना, जो इत्तलात फराम की जाती हैं वो या तो सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से फराम की जाती हैं या जो सरकारी हुकाम है, क्योंकि बलूचिस्तान में मीडिया को बहुत सारे इलाकों में रसाई नहीं है यहाँ के हालात की वजह से। तो इस हवाले से मेरी बात हुई यहाँ के जो वजीर दाखिला हैं मीर सरफराज बुगती, उन्होंने ये बताया कि इंडिया की भारतीय खुफिया एजेंसी रा का एक आजिर सर्विस एजेंट बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ है। उन्होंने बताया कि उनकी गिरफ्तारी बलूचिस्तान के जो जुनूबी इलाके हैं वहाँ से अमल में आई है। तो ये नहीं बताया जिस जगह से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में उन्होंने फिलहाल नहीं बताया। ताहम जो बलूचिस्तान के जुनूबी इलाके हैं उनमें ग्वादर, केच और कराची से मुतसिल लसबेला का जो जिला है ये इलाके जुनूब में वाके हैं। तो उनका ये कहना था कि उनसे तफ्तीश जारी है और उन्होंने ये भी दावा किया कि जो एजेंट गिरफ्तार हुआ है उन्होंने ये इतराफ किया है कि उनके जो बलूचिस्तान में बलूच अलहदगी पसंद हैं उनके साथ के रवाबित हैं। मैंने उनसे पूछा कि जो एजेंट गिरफ्तार हुआ है वो किस रैंक का अफसर है, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त वो ये नहीं बता सकते, उनसे तफ्तीश जारी है और उस तफ्तीश के नतीजे में जो भी मालूमात हासिल होंगी वो मीडिया के साथ शेयर किए जाएंगे।
जी, और जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि उन्होंने इस एजेंट को गिरफ्तार किया है जिसे वो भारतीय एजेंट बता रहे हैं, उसका नाम और उसके बारे में कुछ और जानकारी बताई है आपको?
देखिए, वजीर दाखला से मैंने जो है ना कोशिश की कि वो उनका नाम बताए और रैंक बताए, तो उन्होंने मुझे इस हवाले से कुछ नहीं बताया। ताहम पाकिस्तानी न्यूज चैनल है उसके हवाले से कोई कुलभूषण यादव इस तरह का कोई नाम वो दे रहे थे और पाकिस्तानी न्यूज चैनल ये खबर भी दे रहे थे कि वो कमांडर रैंक का अफसर है। ताहम अभी तक जो मतलब वजीर दाखिला है या यहाँ के जो सरकारी हुकाम है उन्होंने नाम और उनके जो है ना रैंक के हवाले से एक बात की तस्दीक नहीं की है। अब बलूचिस्तान हुकूमत के साथ चूंकि का जो है ना वास्ता नहीं है, तो बलूचिस्तान में जो काम है वो ये कहते रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में जो हालात की खराबी है उसमें बैरूनियात बिलखसूस भारत और रा का जो है ना आत है, तो वो ये कहते रहे हैं कि हम दरख्वास्त करते हैं वहाँ जो है ना फेडरल गवर्नमेंट को ताकि वो जो है ना इस हवाले से जो भारतीय हुकूमत है उसके साथ इन मामलात को उठाए और जो बाकी बैन अलाकामी फोरम हैं उन पे इन मामलात को उठाए और इस हवाले से जो सबूत वगैरह हैं वो जो है ना इनको पेश करें।
पाकिस्तान ने भारतीय जासूस को पकड़ने का किया दावा। ये थे क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
75 वर्षों से आपके साथ।
बीबीसी हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब कुछ खबरें भारत से। भारत प्रशासित कश्मीर में राजनीतिक सस्पेंस खत्म हो चुका है और अब अगले हफ्ते किसी भी समय पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकती हैं। ये नाटकीय घोषणा पीडीपी ने कल महबूबा मुफ्ती को सर्वसम्मति से पीडीपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्रीनगर में की। आज महबूबा मुफ्ती राज्यपाल से मुलाकात करेंगी। श्रीनगर से रियाज मसरूर की ये रिपोर्ट।
10 सप्ताह से पीडीपी और बीजेपी के बीच काफी मोल तोल हुआ, लेकिन अंततः पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना स्वीकार कर ही लिया। 22 मार्च को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संक्षेप भेंटवार्ता के बाद महबूबा को श्रीनगर में पार्टी के विधायकों और सांसदों ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना नेता चुन लिया।
मुझे लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुनते हुए जो मुझ पे अपना एतबार जतलाया है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ ही आप सब लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। पिछले तकरीबन 3 महीने से जिस तरह आप जुटे रहे मेरे पीछे, महबूबा मुफ्ती की कोई ताकत नहीं है। महबूबा मुफ्ती की ताकत आप लोग हो जो मेरे पीछे मेरी जमात, मेरे MLA।
मीटिंग के बाद पार्टी के प्रवक्ता नईम अख्तर ने बताया कि राज्यपाल नरेंद्रनाथ बोहरा ने पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के अध्यक्ष को जम्मू बुला लिया है, जिसके बाद दोनों पार्टियां सरकार गठित करने का काम शुरू करेंगी। पीडीपी के सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग ने पहले ही इन अटकलों को नकारा कि बीजेपी अब सरकार बनाने के लिए उल्टी शर्तें रखेगी। मिस्टर बेग का कहना था कि ये मामला तय है और पार्टियों की बैठकें अब खाना पूरी है। गौरतलब है महबूबा मुफ्ती पिछले 2 महीने से कहती रही हैं कि प्रधानमंत्री गठबंधन समझौते को लागू करने का खुद ये आश्वासन दें तो वो आगे बढ़ेंगी। इस समझौते में पाकिस्तान और अलगाववादियों के साथ बातचीत, पनबिजली योजनाओं को राज्य को लौटाने और बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने की बातें हैं, लेकिन इन सभी मुद्दों पर पहले ही काम हो चुका है। पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार आया है और राज्यपाल ने 800 करोड़ रुपए की राशि बाढ़ पीड़ितों में बांटने के साथ साथ आबादी वाले क्षेत्रों से सेना के कैंप हटाने का आदेश भी दे दिया है। मुख्यमंत्री बनते ही अपोजिशन महबूबा मुफ्ती को इस सवाल पर घेरने की तैयारी में है कि अगर उन्होंने बिना कोई छूट लिए सरकार बनानी थी तो 2.5 महीने की देर करके लोगों को दंड क्यों दिया गया। रियाज मसरूर, बीबीसी, श्रीनगर।
पाकिस्तानी मूल के अमरीकी चरमपंथी डेविड कोलमैन हेडली के मुताबिक चरमपंथी संगठन लश्कर तैयबा ने कई साल पहले शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की हत्या की कोशिश की थी। हेडली ने मुंबई में न्यायाधीश जीएस नाप की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पेशी में कई अन्य जानकारियां भी दी। हेडली 2008 के मुंबई हमलों के मसले में सरकारी गवाह हैं। हेडली से पूछताछ आज भी जारी रहेगी। पूरे मामले पर एक रिपोर्ट के साथ मुंबई से अश्विन अघोर।
मुंबई पर हुए 26/11 चरमपंथी हमले में अमेरिका में सजा काट रहे डेविड हेडली की विशेष अदालत में बचाव पक्ष द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही है। कल हुई कार्रवाई में हेडली ने अदालत को बताया कि लश्करे तैयबा का शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की हत्या करने का प्लानिंग था, लेकिन किसी कारणवश यह प्लान कामयाब न हो सका। अदालत की कार्रवाई के बारे में विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने मीडिया को बताया।
पहली बात उसने कही है कि 26/11 का हमले के लिए जो भी पैसा मिला था उसको पैसे को ISI ने मुझे दिया था, ये बात उसने साफ साफ पेश किया। इसके बाद दूसरी बात उसने ये कही कि 26/11 के आतंकी हमले के बाद लश्करे तैयबा पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर बढ़ने के कारण उन्होंने डेनमार्क में जो हल्ला हुआ था वो सॉफ्ट किया था।
ये थे उज्जवल निकम। बचाव पक्ष के वकील अब्दुल वहाब ने कहा कि हेडली ने यूनाइटेड अरब एमिरेट में काफी संपत्ति खरीदी है जिसकी कीमत $1-1.5 लाख है। अब्दुल वहाब ने कहा कि 26/11 हमलों में हेडली को काफी जानकारी है, लेकिन माफी मिलने के बावजूद वह पूरी जानकारी अदालत को नहीं दे रहे हैं। बचाव पक्ष के वकील अब्दुल वहीब का कहना था कि हेडली की पत्नी शाजिया भी इस पूरी साजिश में शामिल थी और उसे भी इस मामले में आरोपी बनाया जाए, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में पूछे गए किसी भी सवाल का हेडली ने कोई जवाब नहीं दिया। बचाव पक्ष द्वारा पूछे गए कुछ सवालों के बारे में उन्होंने कहा कि यह उनके और उनके पत्नी आपस का मामला है और इसे अदालत के सामने लाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, और कुछ सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें उसके बारे में कुछ याद नहीं है। बचाव पक्ष के वकील अब्दुल वहाब ने कहा,
हेडली को कोर्ट ने माफी इस आधार पर दिया है कि वो सब सच और पूरा सच कोर्ट को बताएगा, कोर्ट से कुछ छुपाएगा नहीं। इस घटना में जो जो शामिल है, जिन लोगों ने जो भाग लिया वो बताएगा, मगर आज के उसके इस व्यवहार से ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बातें कोर्ट से छुपाने की कोशिश की जा रही है।
ये थे अब्दुल वहाब। कल अदालत में उज्जवल निकम और अब्दुल वहाब के बीच आर्गुमेंट्स की वजह से अदालत का माहौल गर्मा गया था। उज्जवल निकम के ये कहने पर कि अब्दुल वहाब पाकिस्तान में मशहूर है, वहाब ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह काफी गंभीर टिप्पणी है। आखिरकार जज सानप ने बीच बचाव करते हुए मामला शांत किया। डेविड हेडली का क्रॉस एग्जामिनेशन आज भी जारी रहेगा। बीबीसी हिंदी के लिए मुंबई से अश्विन अघोर।
सऊदी अरब में काम करने वाले भारतीय ड्राइवर अब्दुल सत्तार मकंदर को रिहा कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए अपने वीडियो में गलत बयानी के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया था। मकंदर का परिवार कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के डांडली इलाके में रहता है। इमरान कुरैशी की ये रिपोर्ट।
अब्दुल सत्तार मकंदर की बस इतनी गलती थी कि उन्होंने एक वीडियो पर कहा था कि उन्हें कुछ महीनों से कंपनी पगार नहीं दी थी, हालांकि उनकी कंपनी ने उनके इल्ज़ाम को खारिज कर दिया था। मकंदर की मां नूर जहां का मानना था कि वो अपने चार बच्चे और बीवी को मिस कर रहा था और इसीलिए कंपनी से छुट्टी मांगा था, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार छुट्टी 2 साल के बाद ही मिल सकती थी और मकंदर को अभी भी 2 साल ख़त्म करने के लिए 6 हफ्ते बाकी थे। उन्होंने दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन श्रीवास्तव को वीडियो भेजा था, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। कुंदन श्रीवास्तव कहते हैं,
उसका फोन आया मेरे पास जिसमें उसने बोला, कुंदन सर मैं रिहा हो गया हूँ, मुझसे इंडियन एम्बेसी जो रियाद में है उन लोग मिलने आए थे और उन लोगों ने उसको आश्वासन दिया था कि हम आपको यहाँ से लेने आए हैं और आपको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाएगा। उसको जेल से रिहा कर दिया गया है, एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया गया है और ये बोला गया है कि जब हम आपको बुलाएंगे तो आप यहाँ पे आ जाना अटेंडेंस लगाने। लेकिन उनको पूरी तरह घर पे छोड़ा गया है और वो घर पे है अभी आराम से खुशी से, और बहुत खुश थे वो जब उन्होंने फोन किया था, बोला कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मुझे सही सलामत घर पे छोड़ दिया गया है, रिहा कर दिया गया है।
मकंदर कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले के डांडेली के पास रहते हैं, लेकिन क्या वे अब अपने परिवार से मिल सकते हैं? श्रीवास्तव कहते हैं,
मेरा अब यही, मैं सरकार से ही आग्रह कर रहा हूँ कि अभी तक क्योंकि सुषमा स्वराज मैडम का कोई ऑफिशियली ट्वीट नहीं आया है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि उसको जिस तरह सुषमा स्वराज मैडम ने काम किया है 2 दिनों में और इंडियन एम्बेसी खुद जाकर जेल में मिली है अब्दुल सत्तार से, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वो जरूर उसको वापस लेकर आएंगे। लेकिन अभी तक इसका कोई वो नहीं है, ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो मैं भी लगा हुआ हूँ कि मैं भी बात कर पाऊँ और मुझे भी कुछ पता चले इस मैटर।
सोशल मीडिया के जरिए उठा इस मुद्दे से मकंदर की मदद तो हुई, लेकिन उन्हें असल खुशी तभी मिलेगी जब वे अपने परिवार से मिल पाएंगे। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह के साथ। और श्रोताओं, आपको याद ही है कि कल होली थी, इसीलिए अखबार समाचार पत्रों के जो दफ्तर है वो बंद थे और इसीलिए अखबार हम तक नहीं पहुंचे, और हम माफ़ी चाहेंगे कि आज हम आपको समाचार पत्रों की समीक्षा नहीं सुना पाएंगे। और अब बात विशेष रिपोर्ट की करते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में चरमपंथ के दौरान 3 से 4 लाख कश्मीरी पंडितों को घाटी से अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ा था। आज उनकी वापसी एक समस्या बनी हुई है। प्रधानमंत्री पैकेज से पंडित अधिक संतुष्ट नहीं है। हमारे साथी जुबैर अहमद ने हाल में कश्मीर से लौटकर कई विशेष रिपोर्ट तैयार की हैं। आज की उनकी रिपोर्ट में उन्होंने इस बात का जायजा लिया कि क्या कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में वापसी संभव है।
श्रीनगर के एक जर्नलिस्ट मनोहर लाल गामी कुछ साल पहले दिल्ली गए हुए थे।
कश्मीरी पंडितों की एक फंक्शन थी, तो उसने गाना शुरू कर दिया कि हमसे मत पूछिए हम किधर जाएंगे, थक गए हैं बहुत अपने घर जाएंगे। तो मैंने उन कश्मीरी पंडितों को भी रोते हुए देखा जो पैदा ही नहीं कश्मीर में हुए थे, तो वो कनेक्टिविटी जा नहीं सकती और यहाँ के जो कल्चरल कनेक्टिविटी है, मेजॉरिटी की फीलिंग्स भी है, वो भी ख़त्म नहीं हुई है।
कश्मीरी मुस्लिम समाज में इसी फीलिंग, इसी एहसास को टटोलने के लिए मैंने कुलगाम के एक बुजुर्ग मोहम्मद यूसुफ से पूछा।
और वो जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या आपका पैगाम?
ये तो काम गवर्नमेंट का है।
पर आप खुशामदीद कहेंगे?
क्यों नहीं कहेंगे, जब वो आएंगे तो हम ویلکم کریں گے ان کا. آج بھی آتے ہیں ہمارے گھر میں, چار چار پانچ پانچ دن رہتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں.
زیادہ تر کشمیری مسلمانوں نے مجھے بتایا کہ وہ کشمیری پنڈتوں کی واپسی کے حق میں ہیں, لیکن ان کے اندر میں نے پچھتاوے کا احساس نہیں پایا.
تو ان کو روکنے کی آپ لوگوں نے کوشش کی جب وہ جائے؟
وہ تو وہ خود چلے گئے, تو روکنے والے کون ہوتا ہے؟ جب آپ کی مرضی ہے جانے کے لیے تو آپ کو کون روکے گا؟
تو کچھ مجبوری کی حالت,
مجبوری میں, کوئی مجبوری میں نہیں چلا گیا, وہ اپنی مرضی چلے گئی.
ہاں, جو کشمیری ملیٹنٹس انہیں گھاٹی سے باہر دھکیلنے میں شامل تھے وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ انہیں پچھتاوا ہے. جیسا کہ سیف اللہ جو اس زمانے میں حرکت المجاہدین کے ایک بڑے ملیٹنٹ تھے.
سیف اللہ صاحب,
السلام علیکم.
خیریت سے ہیں؟ میں رحمت ہوں بی بی سی سے.
جی, میں سیف اللہ ہوں. آئیے.
اچھا, یہی آپ کا گھر؟
جی ہاں جی, یہی غریب خانہ ہے.
تو آپ بھی آنا چاہتے ہیں؟
جی ہاں, یہ ہاں ہاں, یہ بھی حرکت المجاہدین سے ہیں جناب.
تو آئیے نا, آپ بھی بیٹھیے. نہیں, آپ بھی بیٹھے. آپ کا نام؟
میرا نام محمد صدیق خان.
محمد صدیق خان
جی.
دونوں سگے بھائی ہیں؟
دونوں سگے بھائی.
اچھا, اس زمانے میں جب پنڈت یہاں سے فرار ہو رہے تھے تو بندوق سے لوگوں کو بھی بھگایا گیا, مارا بھی گیا؟
نہیں نہیں نہیں, دیکھیے ایک بات بتاؤں,
آپ نے نہیں کیا ہوگا لیکن لوگوں نے تو کیا.
میں بتاتا ہوں.
آپ نے ابھی کہا کہ بندوق میں نے بھی اٹھایا تھا ان کے خلاف.
ان کے خلاف؟ ہاں, سمجھ لیجیے ان کے خلاف.
مطلب ایسے لوگ تھے آپ کے تحریک میں جو بھگا رہے تھے ان کو؟
بالکل تھے, بھگانے والے بھی تھے,
مارنے والے بھی تھے.
مارنے والے بھی تھے, مارنے والے بھی تھے.
تو پچھتاوا ہوا کبھی کہ غلط ہو گیا ان کے ساتھ؟
پچھتاوا تو آج تک ہوتا ہے, پچھتاوا تو بھائی جان آج تک ہوتا ہے.
آج سیف اللہ ایک کشمیری پنڈت کے گھر میں کرائے پر رہتے ہیں اور ان کی واپسی کے لیے ہڑتال بھی کرنے کو تیار ہیں.
میں ہیرو رہ چکا ہوں اپنے زمانے کا, ہیرو نا, ہیرو جسے کہتے ہیں لوگ, تو سلمان خان کو دیکھتے ہیں. میں خود اپنے آپ میں سلمان خان رہ چکا ہوں. میں وہ مجاہد ہوں, ملٹنٹ نہیں کہوں گا, میں وہ مجاہد ہوں, سابقہ مجاہد ہوں. میں چاہتا ہوں کشمیری پنڈت پھر واپس آئیں, امن اور سلامتی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں.
آپ نے کوشش کی, ہڑتال کی ان کے لیے؟
نہیں, ہڑتال تو نہیں کی. چلیے ٹھیک ہے, آپ سے یہ وعدہ رہا, انشاءاللہ ہم ہڑتال بھی کر کے دکھائیں گے آپ کو.
یہ سب کچھ شروع ہوا 1990 میں. کشمیر میں ملٹنسی شروع ہو چکی تھی جس کے دوران کشمیری پنڈتوں کے خلاف مسجدوں سے نعرے گونجتے تھے, وہ ہلاکتوں اور حملوں کا شکار ہو رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے 3 سے 4 لاکھ کشمیری وادی سے فرار ہو گئے. کشمیر میں صرف 3 سے 5 ہزار پنڈت بچ گئے. منوہر لال گامی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا لیکن کشمیر کو نہیں.
ماحول کچھ ایسا بن گیا تھا کہ کسی کے بس میں کچھ نہیں رہا. پڑوسیوں نے کوشش کی لیکن حالات ایسے تھے کہ وہ کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتا تھا کتنا روک لے.
لیکن جو کشمیری پنڈتوں سے میں بات کرتا ہوں جو کشمیر سے باہر رہ رہے ہیں, ان کو ایک ملال ہے کہ ہمارے پڑوسیوں نے روکنے کی ہمیں مدد نہیں پہنچائی.
اس کو میں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں لے سکتا. کئی جگہ پڑوسیوں نے مدد نہیں پہنچائی لیکن کئی جگہ پڑوسی آئے.
کشمیری پنڈتوں کی کشمیر واپسی کا معاملہ ایک اہم مدعا, ایک پیچیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے. کشمیری پنڈت اپنے وطن کو واپس لوٹنا چاہتے ہیں لیکن وہ جائیں تو جائیں کہاں؟ کئی لوگوں نے اپنے پشتینی گھر سالوں پہلے بیچ ڈالے ہیں سستے داموں پر. اب انہی گھروں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. کوئی کہتا ہے کشمیری پنڈتوں کے لیے سمارٹ سٹی بنانا چاہیے, کسی کی رائے ہے کہ انہیں شہروں کے بیچ دوبارہ آباد کر دینا چاہیے. جتنے منہ اتنی ہی باتیں. مہاراج کرشن پنڈتا ایک ایسے اکیلے کشمیری مجھے ملے جن کی رائے تھوڑی سی ہٹ کر تھی.
ہمارے پاس یہاں پہ کشمیر ویلی میں جتنی بھی شرائنز ہیں ہماری, بہت زمین ہے ہماری. ہم ایک چھوٹا سا مثال دے دیں گے شری نگر کا. یہاں ہمارا ایک اینشنٹ شرائن ہے, شیو ٹیمپل وچار ناگ نوشہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے, بہت پراچین مندر ہے, 58 کنال لینڈ ہے اس کی. اگر گورنمنٹ ان ایسے سائٹس کو ریبلیٹیٹ کریں گے, ریوائیو کریں گے, وہاں پر ملٹی اسٹوری بلڈنگز بنائیں گے اور الاٹمنٹ کریں گے کشمیری پنڈتوں کو وہاں بیٹھنے کے لیے, سب سے بہت اچھی جگہ ہے.
پرائم منسٹر اسکیم کے تحت کشمیری پنڈتوں کی واپسی کی کوشش اب تک ناکام رہی ہے. اب تک صرف 2000 کے قریب پنڈت واپس لوٹے ہیں اور سرکاری مکانوں میں آبادی سے الگ رہتے ہیں. منوج پنڈتا سینئر پولیس آفیسر ہیں لیکن لکھنے پڑھنے کے شوقین ہیں. وہ کہتے ہیں باہر رہنے والے کشمیری اب واپس نہیں لوٹیں گے کیونکہ وہ کامیاب ہیں اور اچھی نوکریوں میں ہیں.
کیا ان کو ویسی سویدھائیں یہاں ملیں گی؟ کیا ان کو ویسے پیکیجز یہاں ملیں گے؟ وہ انہوں نے تو ڈیسائیڈ کرنا ہے نا, وداؤٹ پالیٹکس, وداؤٹ اینی میلس. دیکھیں تو جب آپ کو باہر زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, اندر آ کے وہ کہاں ملیں گے آپ؟
لیکن کشمیری پنڈت کہتے ہیں اپنا گھر اپنا ہوتا ہے اور اپنے گھر کو واپس لوٹنا ان کی خاص اور جائز مانگ ہے. معاملہ جب زبان کا آتا ہے, کھانے پینے کا آتا ہے, رسم و رواج کا آتا ہے تو کشمیری پنڈت اور کشمیری مسلمان ایک ہو جاتے ہیں. کشمیری مسلمان کشمیری پنڈت ڈاکٹروں, ٹیچروں اور انجینئروں کو کافی مس کرتے ہیں. और अब इन पेशों में कश्मीरी पंडितों की वापसी शुरू हो चुकी है। ये उनकी निजी या जाती कोशिश है। धीरे धीरे ही सही उनकी घर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है।
हमसे मत पूछिए हम किधर जाएंगे, थक गए हैं बहुत, थक गए हैं बहुत अपने घर।
जुबैर अहमद, बीबीसी श्रीनगर।
और अब बात खेल की। आईसीसी वर्ल्ड 2020 में आज दो अहम मुकाबले होंगे। आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है। इस मैच पर भारत की भी नज़र रहेगी। वहीं दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज़ के बीच खेला जाएगा। वेस्टइंडीज़ के लिए अच्छी खबर ये है कि तेज तर्रार ओपनर क्रिस गेल फिट हो गए हैं। हमारे सहयोगी रजत चाना ने इन दोनों मुकाबलों को लेकर वरिष्ठ खेल पत्रकार एयाज़ मेनन से बात की।
दोनों ही टीम में नजर आई है कुछ खामियां, कुछ वीकनेसेस, और दोनों में कुछ स्ट्रेंथ नजर आया। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जैसे हम जानते हैं उनकी तेज गेंदबाजी है, लेकिन उनके पास स्पिनर्स की कमी है। पिछले मैच में उन्होंने इमाद को खिलाया तो कुछ ऐसा लगा कि अटैक बैलेंस हो गई है, लेकिन वरना पहली मैच में जब इंडिया के खिलाफ केवल शाहिद आफरीदी खेले थे तो उनका हशर बुरा हो गया था। इन पिचेस पे जरूरत है स्लो बॉलर्स की, और ऑस्ट्रेलिया ने भी काफी इस्तेमाल किया है जंपा का, लेकिन उनके अलावा कोई और स्पिनर नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल जो है वो पार्ट टाइम बॉलर आप कह सकते हैं या रोलर कह सकते हैं, जेन्युइन ऑफ स्पिनर जो चाहिए ऐसी पिचेस पे वो नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों ही अटैक्स में थोड़ी सी कमी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए फायदा ये है कि उनकी बैटिंग ज्यादा मजबूत नजर आती है, पाकिस्तान की बैटिंग अभी भी काफी हल्की।
और आपने बल्लेबाजी की बात करी तो शेन वॉटसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा करने की घोषणा कर दी है, तो ऐसे में शेन वॉटसन और बाकी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की बात करें तो कैसी लगती है आपको ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी?
देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी या बैटिंग ऑर्डर आप कहें तो बहुत डीप, बहुत गहराई है, उसमें एक्सपीरियंस भी काफी है। वॉटसन खुद बहुत ही तजुर्बेकार है, हालांकि अभी ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। उस्मान ख्वाजा बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में और सबसे बेहतरीन बैट्समैन नजर आए इस टूर्नामेंट में अब तक ऑस्ट्रेलिया से। स्मिथ जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इनके पास के डेविड वार्नर जो बड़े ही धुआंधार ओपनिंग बल्लेबाज माने जाते हैं, उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिला रहे किस वजह से, कुछ लॉजिक है शायद, राइट लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए, इसलिए ख्वाजा और वॉटसन से ओपन करा रहे हैं, लेकिन ये एक अनसेटल्ड ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑर्डर मुझे नजर आता है।
और उधर नागपुर में जमता में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला वेस्ट इंडीज से, तो ऐसे में इस मैच में क्या लगता है आपको किसका पलड़ा भारी होगा?
ये मेरे ख्याल से बहुत ही एक मुश्किल सवाल है कि किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज T20 क्रिकेट में बहुत मजबूत साइड है। जैसे हम जानते हैं कि इससे भारत अभी नंबर वन बनी टीम, लेकिन उससे पहले वेस्ट इंडीज नंबर वन रैंक टीम थी, हालांकि टेस्ट मैचेस में उनकी रैंकिंग थी नंबर 8। तो ये बताता है किस तरह से लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज जो है बहुत मजबूत बन जाती है। क्यों, और क्रिस गेल वो अगर आ जाए और अगर वो 10-12 ओवर खेल ले तो मैच का नतीजा सबको पता हो जाता है कि क्या होगा। उनके अलावा ब्रावो है, आंड्रे रसल है, और अच्छे खासे उनके पास बल्लेबाज है जो नंबर 8 डैलन सैमी नंबर 8 या 9 पे आते हैं कभी कभी, जो कैप्टन है। तो बहुत गहराई है बैटिंग लाइनअप में। साउथ अफ्रीका के पास भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है कि वो जीती हुई मैच चोक कर जाते हैं और हार जाते हैं। तो अगर 229 बनाने के बाद हारे इंग्लैंड के खिलाफ, ये बताता है आपको कि कहीं ना कहीं टेम्परामेंट जो है बहुत जरूरी होता है। किस तरह से आप बड़ा स्कोर भी खड़ा कर दें, अगर आप उसे डिफेंड नहीं कर सकते तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है बड़े स्कोर का। तो कांटे का टक्कर है, और यहाँ पर भी एक साउथ अफ्रीका के लिए चुनौती है कि सेमीफाइनल तक पहुंचना है। वर्ल्ड कप में हमने देखा था पिछले साल 50 ओवर वर्ल्ड कप में कि नंबर वन रैंक टीम थी लेकिन वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी।
तो आज होंगे वर्ल्ड कप T20 में अहम मुकाबले। खेल पत्रकार एयाज़ मेनन से बात कर रहे थे रजत चान्ना। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
पेरिस के उत्तर पश्चिमी उपनगर से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद फ्रांस की पुलिस ने चरमपंथ विरोधी अभियान शुरू किया है। अधिकारियों के मुताबिक ब्राजील्स में पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले ही ब्राजील्स के एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर बड़े आत्मघाती हमले हुए थे। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि अमरीका और रूस के बीच सीरिया में राजनीतिक परिवर्तन के काम को तेज करने पर सहमति बन गई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने कहा है कि रूस और अमरीका सीरिया सरकार और विपक्ष के बीच सीधी वार्ता कराने का प्रयास करेंगे। नाइजीरिया के अधिकारियों का कहना है कि बोको हराम चरमपंथियों ने देश के उत्तर पूर्वी इलाके से 16 महिलाओं का अपहरण कर लिया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे विश्व भारती में 8 बजे दोबारा होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।